हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 1। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैशांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। बड़ी प्रसन्नता के साथ आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबने बहुत ही उत्साह और प्रेम के साथ अब तक श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण किया है और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम योग में पहुंचे हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता के सबसे छोटे अध्याय में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में दो छोटे अध्याय हैं, जिन एक अध्याय नंबर 12 और अध्याय नंबर 15। इन दोनों में 20 श्लोक हैं, 20 श्लोक हैं, परंतु दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही छोटे हैं परंतु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 12वां अध्याय नंबर 12 जो है वो भक्ति योग है। नो डाउट भक्ति के माध्यम से, भक्ति के उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है 12वां अध्याय। और ये 15वां अध्याय जो अध्याय नंबर 15 है वो है पुरुषोत्तम योग। आचार्य घर का कहना है कि सारी भगवत गीता और सारे तत्व ज्ञान का सार इन 20 श्लोकों में भगवान ने बता दिया है, जो 15वें अध्याय के 20 श्लोक हैं। भले ही छोटा अध्याय है लेकिन पूरी भगवत गीता का निचोड़ भगवान ने इसमें बताया है। इसलिए कई बार जब छोटे बच्चे पाठशालाओं में जाते हैं तो उनको श्लोक याद करने होते ना तो 15 अध्याय को ही याद करने के लिए बोलते हैं। और मुझे याद है कि हम बिल्कुल छोटे से थे तभी हमारे घर में एक छोटी सीडी होती थी, उसमें 15वां अध्याय, 12वां अध्याय और 9वां अध्याय, ये 3 अध्याय थे और हम सब ने ये कंठस्थ किए हुए थे। हमें पता नहीं था कि भगवत गीता के श्लोक हैं बस, लेकिन इस तरह से कंठस्थ किए हुए थे कि बस ये तो भगवान की कृपा है या पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्म होते हैं जो हमें पुनः वहीं से स्टार्ट करने को भक्ति मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा है भक्ति कभी भी क्षय नहीं होती है। तो ये 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो महान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज हैं, उन्होंने बताया है कि ये 15वां अध्याय त्रिश्लोक भगवत गीता कहलाता है। इसके अंदर 3 श्लोक ऐसे हैं जो पूरी भगवत गीता का निचोड़ है। साधारणतया आप सबने सुना होगा चतुर्श्लोकी भगवत गीता के विषय में, आप सब जानते हैं, वो श्रीपद रामानुजाचार्य ने बताया है कि 10वें अध्याय के 4 श्लोक, 8 से लेकर 11 तक, ये वो श्लोक हैं जो चतुर्श्लोकी भगवदगीता कहलाते हैं, 10.8-11। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 15वें अध्याय के जो आखिरी श्लोक हैं, आखिरी 3 श्लोक हैं, 18, 19 और 20, ये त्रिश्लोकी भगवत गीता है। इस अध्याय के 20 श्लोकों को, इसके अंदर टोटल 20 श्लोक हैं और इनको हम 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि कैसे ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, जैसे भगवान हमें बताएंगे श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये जो विषय है उसमें यह भौतिक जगत को एक प्रतिबिंब, एक माया बताया गया। और ये भौतिक जगत में आकर जीव उस माया से आनंदित होना चाहता है। तो दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है, कैसे इस भौतिक जगत में हम सुख भोग रहे हैं। अब क्योंकि ये माया है, ये सब प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब का मतलब है रिफ्लेक्शन है, खाली अक्स है। अब जैसे किसी भी रिफ्लेक्शन से हम आनंदित नहीं हो सकते हैं, हमें वास्तविक वस्तु चाहिए, तो ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है निम्नतम से लेकर उच्चतम जितने भी लोक हैं वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, केवल अक्ष है। तो उसमें आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन जीव इस संसार में आकर भगवान की माया द्वारा मोहित हो जाता है और यहाँ पर सुख भोगने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसे दुख प्राप्त होता है। तो ये हमें श्लोक नंबर 7 से लेकर 11 तक के श्लोकों में बताया जाएगा। और तीसरा पोर्शन है 12 से 15 तक, 12-15, कि कैसे हर समय भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भले ही हम भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन हर किसी को भगवान उसको इस भौतिक जगत में भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें विस्मृति और ज्ञान प्रदान करते हैं। ये भगवान हम पर, हर एक जीव पर कृपा करते हैं। और उसके बाद जो चौथा पोर्शन है 16 से लेकर 20 तक, उसमें ये बताते भगवान कि जब हम ये समझ गए हैं कि यह भौतिक जगत प्रतिबिंब है और क्योंकि हम इस प्रतिबिंब से, इस रिफ्लेक्शन से आनंद उठाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण सुख की इच्छा के बावजूद भी दुखी होते हैं, तो भगवान का आश्रय ग्रहण किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। तो 16 से लेकर 20 में हमें ये बताया जाता है कि कैसे शुद्ध भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है और निराकार जो होता है, निराकारवाद से, उससे सबसे शुद्ध भक्ति किस प्रकार श्रेष्ठ है और किस प्रकार से जीव को केवल शुद्ध भक्ति ही आनंदित कर सकती है। तो अभी हम श्लोक पढ़ेंगे और धीरे धीरे भगवान हमें इस विषय में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल मध शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् शब्दार्थ श्री भगवान उवाच अर्थात जो भगवान है जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है वह श्री कृष्ण अब बता रहे हैं अर्जुन को कि ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। ऊर्ध्व मूलम मतलब मूल कहते हैं जड़ को, ऊर्ध्व माना ऊपर, ऊपर की ओर जड़े हैं, अध शाखम अध माना नीचे की ओर, शाख मतलब शाखाएं, ऊपर जड़े हैं नीचे शाखाएं हैं, किसकी? अश्वत्थम, एक अश्वत्थ वृक्ष है, एक बड़ का वृक्ष है पीपल का, जिसकी जड़े ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, एकदम उल्टा। और उसके बाद भगवान कहते हैं प्राहुर, ये कहा गया है, कहां कहा गया है? वेदों में कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, और उसके अतिरिक्त बताया गया अव्ययम, ये अव्यय है, कभी भी क्षय नहीं होने वाला, ये कभी, ये शाश्वत है, सदैव रहेगा। अच्छा, तो आगे क्या बताया उस वृक्ष के विषय में? भगवान कहते हैं चन्नांसी, चन्दांसी मतलब वैदिक स्रोत्र, जो वेदों के मंत्र हैं, यस्य पर्णानि, यस्य माना जिसके, पर्णानि मतलब पत्ते। अब एक ऐसे वृक्ष की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, और वैदिक मंत्र उसके पत्ते हैं। और उसके बाद भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही है, यस्तम वेद स वेदवित, यस्तम मतलब जो कोई उसको वेद जानता है, किसको? उस वृक्ष को जो जान लेता है, स वेदवित वही वेदों का जानने वाला है। अब भगवान ये बता रहे हैं कि एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, उसके पत्ते वैदिक मंत्र हैं, जो इस वृक्ष को जान लेता है वही वेदों का जानने वाला है। अब साधारणतया तो हम यही देखते हैं, ये वृक्ष उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि साधारण क्या होता है, जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन भगवान ने एकदम उल्टा वृक्ष बताया है। और उसके अतिरिक्त भगवान ने ये बताया है कि वैदिक मंत्र उसके पत्ते हैं। अब वैदिक मंत्रों में क्या बताया जाता है? जैसे साधारणतया वेदों में कर्म कांड के विषय में बताया जाता है कि यदि आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करो, यदि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी की उपासना करो, यदि सुंदर स्त्री या पुरुष की आवश्यकता है तो शिव जी की पत्नी उमा की उपासना करो, और इस तरह के विभिन्न देवताओं के विषय में भी बताया गया है। तो ये सब कर्म कांड है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि छंदांसि यस्य पर्णानि, ये जो वेदों के छंद हैं, मंत्र हैं, वो तो इसके पत्ते हैं। अब वेदों में कर्म कांड बताया गया और उसके बाद जब उपनिषद आती है तो कर्म कांड का खंडन किया जाता है और ज्ञान कांड का उदय होता है। तो उसमें क्या बताया जाता है उपनिषद में कि ये सब माया है, ये जो वेदों में लिखा हुआ है ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे वो सब माया है। तो उपनिषद वेदों के मंत्रों का खंडन करता है, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि, के जो वेदों के मंत्र हैं वो उस वृक्ष के पत्ते हैं। यस्तम वेदस वेदवित, तो जीव, क्योंकि आजकल क्या होता है, लोगों को खाली वेदों के पत्तों, इन मंत्रों का पता चल जाता है और बोलते हैं कि भाई ये वेदों का ज्ञाता है, इसको पता है कि किसकी उपासना किस तरह से की जाती है, कौन सा मंत्र उच्चारण करने से क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये वेदों का ज्ञाता। लेकिन भगवान कहते हैं यस्तम वेदस वेदवित, खाली पत्तों को या वेदों के ये जो मंत्र है उनको जानने से वेदवित नहीं हो जाओ। वेदवित मतलब वेदों का जानने वाला, तो खाली मंत्रों को समझकर ही आप वेदों को जानने वाले नहीं बनोगे, आपको इस पूरे वृक्ष के विषय में जानना पड़ेगा और इन समस्त वृक्ष के अंदर जो बहुबंधन हो रहा है उस बहुबंधन से छूटकर ही आप आनंदित हो सकते हो। ये सब जान, ये वेदों के मंत्र तो आपको और भी कर्म में लगाएंगे, क्योंकि इससे तो इच्छा होगी तभी आप कर्म कांड करोगे, और कर्म करोगे तो फिर कर्म से क्या होगा। भगवान बताते बहुत सुंदर 2.42 में और 43 में इसके विषय में भगवान ने बहुत विस्तार से बताया है। भगवान कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपाश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना यामिमां पुष्पितां वाचम। अब यहाँ पर भगवान ने पुष्पितां वाचम कहा है, यहाँ पर क्या बताया, छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि यहाँ पर पत्तों के विषय में बताया और यहाँ पर फूलों के विषय में बताया, पुष्प कहते हैं फूलों को। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अल्पज्ञानी मनुष्य ही वेदों के उन अलंकारमय शब्दों यानी उन पुष्पों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। कौन से पुष्प, जो आपको कर्म कांड के द्वारा या तो स्वर्ग की प्राप्ति या अच्छे जन्म, शक्ति, सुंदरता इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, उसको कौन एक्सेप्ट करते हैं, अल्पज्ञानी। भगवान ने कह दिया कि वो तो बेवकूफ हैं जो वेदों की इन अलंकारमय शब्दों की प्रति बहुत आसक्त होते हैं, क्योंकि इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इंद्र तृप्ति ही मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, तो उसके लिए यदि वैदिक सहायता मिल जाए तो फिर क्या, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। एक तो पहले से ही जीव की इंद्र तृप्ति की इच्छा और ऊपर से वेदों का उसको साथ मिल जाता है कि भाई वेदों में तो लिखा हुआ है, तो फिर वो करेगा ना ऐसा। लेकिन भगवान कहते हैं वो बहुत बेवकूफ होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि जब इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करेगा और कार्य क्या है, कर्म करने से उसे फल मिलेंगे, फल और फूल वो क्या है, अर्थ और काम, और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो अर्थ और काम करने से भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसा, क्योंकि उसकी बुद्धि हरण हो जाएगी, फिर वो समझ नहीं पा रहा है कि यही जो फल फूल या फिर जो कर्म कांड के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं वही तो मेरे बंधन का कारण बनती हैं। और जब जीव बंधन में बंध जाता है तब दुखी होता है, सुखी नहीं होता, तो अल्प ज्ञान के कारण वो अपने वास्तविक दुख को समझ ही नहीं रहा है कि मेरा वास्तविक दुख तो इस बंधन में बंधा रहना है। जब तक मैं इन जन्म मृत्यु के इस बहुबंधन से निकल नहीं जाऊंगा तब तक तो मुझे यूं ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, खाली कोशिश करते करते, कर्म करते करते, बारम्बार कभी ऊपर कभी, जैसे हमने पहले पढ़ा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो मध्ये तिष्ठस्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। कभी सत्वगुण में रहकर कार्य करेगा, कभी रजोगुण में रहकर कार्य करेगा, तो कभी तमोगुण में रहकर कार्य करेगा, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी मध्य के लोकों में, यूं भटकता रहेगा। भटकना जीव का शाश्वत लक्ष्य नहीं है, इस ऊपर नीचे और ये बंधन से छुटकारा हासिल करना जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान इसके विषय में हमें बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे कि ये भौतिक जगत है, उसकी रियलिटी क्या है कि ये ऊर्ध्वमूलम मदशाखम, ये तो वास्तविक जो जगत है उसका केवल प्रतिबिंब है। तो ज्ञान के द्वारा भौतिक जगत के खंडन के विषय में और आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना है और फिर निर्विशेष अवस्था को पार करके भगवान की भक्ति करना है, तो इन सब विषयों का विशुद्ध वर्णन भगवान इस अध्याय में हमें करेंगे। अनुवाद देखिए, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का जानने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी तक हमने भक्ति योग को पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन सुना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अभी किसी के मन में ये आ जाएगा कि अभी भक्ति के विषय में इतना अच्छा सुन लिया, अभी वेदों के ज्ञान के विषय में क्यों भगवान बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। वेदों में खाली कर्मकांड नहीं है, वेदों में कृष्ण के विषय में बताया गया है कि वास्तव में भगवान हमें बताएंगे 15.15 में, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचा, कि समस्त वेदों का जानने वाला, समस्त वेदों का रचयिता और समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल मैं हूँ। तो यदि कोई वेदों को जानता है और कृष्ण को नहीं जानता तो समझो उसने वेद को समझा ही नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जो कृष्ण भावना भावित है वो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। अगर कोई भक्ति करता है तो इसका मतलब है उसने वेदों के वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य को समझ लिया है, तभी वो भगवान की भक्ति में लगा है। वो वेदों को पढ़ के बहुत हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गए। भगवान ने कहा है 7:29 में कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये एक जन्म की स्ट्रगल से प्राप्त होने वाली स्टेज नहीं है भगवान की भक्ति। भगवान ने कहा न जाने कितने जन्मों से तुमने स्ट्रगल की है तभी जाके अब तुम मेरी शरण में आयो। ज्ञानवान, सारे वेदों को प्राप्त करके स्टडी करके अभी तुम ज्ञानवान बन गए हो तभी माम प्रवद्यते, मेरी शरण में आयो। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भक्ति में रत है अर्थात वो वेदों को पहले से ही जानता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा की ओर, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा की ओर घूमते रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना भी नहीं है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत एक ऐसा वृक्ष है जो वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब है और अगर कोई यहाँ पर सकाम कर्म में लग जाता है तो फिर वो क्या करेगा। सकाम कर्म छंदांसि यस्य पर्णानि, तो एक वृक्ष से दूसरे, एक पत्ते से, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा पर ऐसे घूमता रहेगा और इस जगत रूपी वृक्ष के अंदर कोई अंत नहीं है। शाश्वतम भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है कि ऐसी ख्वाहिशें कभी पूरी खत्म हो जाएंगी और आप अनासक्त हो जाओगे, नहीं। अगर इच्छाएं करता रहेगा ना जीव तो कभी भी इच्छाओं की कोई कामनाओं की कोई हद नहीं है। यानी भगवान ने कहा इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो कोई इस वृक्ष में आसक्त है, जो प्राप्ति चाहता है सकाम कर्मों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, और भगवान श्री प्रभुपाद जी ने साफ कह दिया उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वास्तव में आत्मोन्नति के लिए है ये सब, लेकिन जीव इसको सकाम इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करता है। तो इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और बढ़ती हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से आरंभ होती हैं। अब ये जो वृक्ष है वो कहाँ पर है? इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जो लोक है, इस ब्रह्मांड में हमने पढ़ा है 14 लोक हैं, पृथ्वी सेंटर में है। ऊपर जो लोक हैं उसमें जनलोक, तपलोक, महालोक, सिद्ध लोक, स्वर्ग लोक, और आखिर में जो ब्रह्म लोक आता ना, तो भगवान ने कहा, श्री प्रभुपाद जी बता रहे ये सर्वोच्च लोक से यानी ब्रह्म लोक से आता है। तो ब्रह्म लोक में इसकी जड़े हैं और नीचे की ओर इसके पत्ते हैं, शाखाएं हैं। तो कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में जीव इस तरह पत्तों से घूमता रहता है, कभी भी मुक्त नहीं होता है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं यानी ब्रह्म लोक से। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। लक्ष्य ये है कि इस भौतिक जो वृक्ष है उससे बाहर निकलना है। तो जब तक इसको समझेंगे नहीं तो बाहर कैसे निकलेंगे? हमें पता होना चाहिए, कोई कैदी है उसको पता तो हो कि मैं कैद हूँ, तभी तो वो बाहर निकलेगा। जब वो सोचेगा कि नहीं मैं कैद नहीं हूँ, ये जेल ही मेरा घर है और इसी में मुझे आनंद लेना। आजकल जीव यही सोचता है कि भौतिक जगत ही मेरी वास्तविक स्थिति है और इसमें मैं कैसे आनंदित हूँ। जब तक जीव को यह रियलाइज नहीं हो जाएगा कि तुम कैद में हो, तुम्हें बाहर निकलना है, तब तक वो कैद से बाहर निकलेगा ही नहीं ना। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब वो इस अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तभी वो इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। अब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैसे तो इस भौतिक जगत से निकलने की दूसरी भी बहुत सारी विधियां हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन अब भगवत गीता में भगवान ने बहुत ही सुंदरता से बता दिया कि भक्ति योग ही सर्वोत्कृष्ट है। सब जितनी भी बाकी विधियां हैं, सबसे आसान और सबसे सरल विधि क्या है? भक्ति योग। भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो, अत्यंत ही सरल है। तो ये कितना अच्छा है, लेकिन आजकल जीव भक्ति योग को अपनाता नहीं है, भक्ति योग में इंटरेस्ट नहीं लगते। उनको ऐसा लगता है कि भक्ति योग तो बच्चों का खेल है। हालांकि भगवान ने पग पग पर श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग की महानता बताई, फिर भी यदि आज किसी को बोलते हैं कि भाई आप भगवान के पवित्र नाम का जप करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाओ, इसी से आपकी मुक्ति होगी, तो वो बोलेंगे नहीं वो तो ऐसे नहीं बता रहा था, वो तो दूसरा बता रहा था, कोई और तो दूसरा बता रहा था। जो इतने सारे, ऐसा नहीं है कि रास्ता एक ही है, परंतु ये रास्ता बहुत ही सरल है, सुगम है और सुसुखम कर तुम अव्ययम। भगवान ने कह दिया चैप्टर नंबर 9.1 में कि ये बहुत ही सुख से कोई अगर भक्ति योग को करता है तो बहुत आनंद से कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या करना है आपको? ईटिंग, डांसिंग एंड चैंटिंग, बस भगवान के अर्पण किया हुआ प्रसाद खाओ, भगवान के कीर्तन के ऊपर डांस करो, नाचते गाते एंड बी हैप्पी, खाते रहो, गुनगुनाते रहो, कीर्तन करते रहो और खुश रहो। यही कितना आसान है भगवान की भक्ति करना, तो ये सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आपको अपने कार्य चेंज नहीं करने हैं, बस वो कार्य सारे भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है और जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो इस भौतिक ब्रह्मांड में हम कार्य करते रहते हैं, अनेक अलग अलग लोकों में जाते हैं और कोई भी कार्य जब जीव करता है तो उसके अनुसार उसको फल मिलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब प्राप्त होते हैं। तो यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा जड़ें ऊपर की ओर हैं कोई अनुभव नहीं है, है ना। ऐसा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा कि जड़ें ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो, देखा नहीं होगा। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर मैं कैसे समझाऊं। फिर भी शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर एग्जाम्पल देंगे जिसके द्वारा हम इसे बहुत ही सुंदर रीति से समझ सकेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। एक नदी हो, जलाशय हो, उसके किनारे पे जो वृक्ष होगा ना, वास्तव में तो वो वृक्ष सीधा होगा, जड़ें नीचे होंगी शाखाएं ऊपर होंगी, लेकिन आप जब जलाशय के अंदर उसका प्रतिबिंब देखोगे तो क्या होगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। असल में वो जल में होता नहीं है, असल में तो बाहर होता है, लेकिन जब हम जलाशय के अंदर उसको देखते हैं वो प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा दिखता है। और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। केवल इतना यदि जीव को समझ में आ जाए ना, तो फिर इस जगत में सुखी होने के लिए कभी भी अपना सर माथा फोड़े ही नहीं, क्योंकि उसे पता है ये प्रतिबिंब है, उसे कभी भी आनंद आने वाला नहीं है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो मुझे वास्तविक अवस्था, वास्तविक स्थिति में जाना पड़ेगा। जैसे बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि यदि हम एक एप्पल लेते हैं और उसको आईने में देखते हैं तो पूरा एप्पल आईने के जैसा ही दिखेगा। अगर कोई सोचे, सॉरी, आईने के अंदर जो एप्पल होगा वो असली ही दिखेगा ना, तो अगर कोई सोचे कि कितना सुंदर एप्पल है, मैं उसको खाऊंगा और आनंदित होऊंगा और जोर से आईने में से वो एप्पल निकालने का प्रयास करे, चाहे कितना ही प्रयास करे, सर फूटेगा, ब्लड निकलेगा, हाथ टूटेंगे, लेकिन एप्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल आईने के अंदर नहीं, सामने टंगा हुआ है, उधर से सामने से उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो आनंद हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, चाहे कोई भी आनंद हो, इस भौतिक जगत में है नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। तो इस भौतिक जगत के इस वृक्ष को पार करके उस वास्तविक वृक्ष के पास जाना पड़ेगा ताकि हम वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकें। तो शीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में यह जगत तो जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने के कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। पहले इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। भगवान बहुत अच्छे तरीके से बता रहे, आगे भी बहुत विस्तार करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब इसको जान लेंगे फिर हम इस वृक्ष के साथ अपने संबंध को विच्छेद कर सकते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब एज इट इज है। जो आईने में छवि दिखती है या जो जल के अंदर छवि दिखती है वो एज इट इज होती है, परंतु खाली उल्टी होती है ना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सब आनंद जो आप इस भौतिक जगत में इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो या लूटने का प्रयास करते हो, वो सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष, तप तीन गुण निकलते हैं और फिर पांच स्थूल तत्व, पंच महाभूत, फिर दस इंद्रियां, दशेंद्रिय, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत अब श्री प्रभुपाद जी ने बताया ब्रह्म को निर्विशेषवादी भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं कि ये भौतिक वृक्ष कहाँ से आया, ब्रह्म से आया, निराकार से आया। तो और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल के पहले से पहले प्रकृति, पुरुष और तब तीन गुण निकलते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है? प्रकृति, पुरुष और तीन गुण निकलते हैं। फिर पांच स्थूल तत्व निकलते हैं, पांच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर दस इंद्रियां निकलती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। इस प्रकार वे सारे क्या होता है, इस प्रकार वे इस सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित कर देते हैं। पूरा संसार जो है वो 24 तत्व, 24 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी साइंस बता रहे हैं कि यह यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत, अब ब्रह्म केंद्र है इसका, ठीक है, हर चीज का, जो भी अभिव्यक्तियां हैं, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है उसका केंद्र क्या है, ब्रह्म है। तो फिर तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश गोलार्ध में है और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। मतलब पूरा एक सर्कल है जिसमें सेंटर में आधा जो है ऊपर वाला हिस्सा आध्यात्मिक जगत है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो भौतिक जगत है। अब जो वास्तविक वृक्ष जो है वो आध्यात्मिक जगत में है तो उसका पूरा प्रतिबिंब कहां पर आ रहा है, उसका पूरा रिफ्लेक्शन जो भौतिक जगत है उसमें आ रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ, जो कुछ आध्यात्मिक जगत में है, जितना टेस्ट है, जितना आनंद है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, चाहे भौतिक कोई भी वस्तु को प्राप्त करके हम आनंदित होना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा वास्तविक टेस्ट है लेकिन वो कहाँ पर है, वो आध्यात्मिक जगत में है और यहाँ पर केवल उसका रिफ्लेक्शन है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी आनंद हम सोच सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का है, वो वास्तव में है और वो कहाँ पर है, आध्यात्मिक जगत में। इस जगत में केवल उसका प्रतिबिंब है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। ये प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति है, और भोक्ता कौन है, पुरुष कौन है, भगवान है। ये भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बता चुका। आगे चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। संसार में जो हम देख रहे हैं वो भगवान ने पहले ही बताया, अनित्यम असुखम, ये क्षणिक है। असुख इसलिए है क्योंकि प्रतिबिंब है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रतिबिंब भी क्षणिक है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। आज ये संसार व्यक्त है, प्रलय होने के बाद समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं परंतु वह स्रोत्र जहां से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वो आध्यात्मिक जगत जहां पर वास्तविक वृक्ष है वो शाश्वत है। भगवान ने कहा है कि प्राहुर अव्ययम, ये शाश्वत है। वास्तव में प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वो इटर्नल है। अब हमें क्या करना है, श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है इसको, क्योंकि ये केवल प्रतिबिंब है, केवल रिफ्लेक्शन है, तो उसको काटना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यानी कि कोई वेद जान रहा है और फिर भी केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करता रहता, तब तो समझो उसने कुछ जाना ही नहीं। वेदों का जानने का मतलब क्या है कि आपको इस भौतिक वृक्ष से बाहर निकलने के लिए अनासक्त होना पड़ेगा, विच्छेदन करना होगा, आसक्ति को खत्म करना होगा, जो कि आगे भगवान समझाएंगे। तो यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकर्षित होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकर्षित होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता है। खाली कर्म कांड के द्वारा इंद्रिय भोग करना ही वेदों का लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल उस वृक्ष की हरी पत्तियों की ओर आकर्षित है, तो वह वेदों को नहीं जानता है। वास्तविक उद्देश्य क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, समस्त वेदों का जानने वाला, समस्त वेदों का रचयिता और समस्त वेदों के द्वारा जानने के का लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, कि किस प्रकार से हम भौतिक जगत की आसक्ति को समाप्त करें और आनंदित होने का वास्तविक प्रयास करें। और वो क्या है? वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, क्योंकि प्रतिबिंब से आनंद नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहां तक अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया है। ये असल में भगवान श्री कृष्ण ने 13.22 से ही इस संसार वृक्ष का प्रारंभ कर दिया था। याद है 13.22 में भगवान ने बताया था, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। कि क्या होता है, पुरुष प्रकृति स्थो ही, पुरुष यानी जीव जब इस प्रकृति में आ जाता है तो क्या करता है, भोगते प्रकृति जान गुणा, तब वो भोगता है प्रकृति जान यानी प्रकृति से उत्पन्न गुणा से, क्योंकि अब वो गुणों में फंस गया तो फिर वो क्या करता है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और फिर क्या होता है, कारणम गुण संगस्य, इसका कारण क्या है, क्योंकि गुणों के साथ उसका संग हो गया है या उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, तो उसके साथ क्या, उसकी बदली में क्या होता है, सदसद योनि जन्मसु, उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने बता दिया 8.16 में, आब्रह्म भुवनालो का पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म ना वृत्यते। आब्रह्म भुवनालो का जो इस वृक्ष, ये वृक्ष है उल्टा प्रतिबिंब, वो कहां से शुरू हुआ है, ब्रह्मलोक से। तो यदि आप ब्रह्मलोक में पहुंच जाओगे तो भी क्या होगा, पुनरावृत्ति नो, तो फिर हमें क्या करना है, इस वृक्ष से आगे निकलना है। तो पुरुष इस प्रकृति में आ जाता है, भोग करने की इच्छा होती है और इच्छा के कारण वो क्या करता है, कर्म करता है, कर्म से क्या बनता है, फल मिलता है, और फल क्या होता है, बंधन का कारण, और बंधन से क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो ये वृक्ष का जो प्रारंभ, जो प्रतिबिंब है वो कहां दिख रहा है, पानी में, क्योंकि उल्टा है इसलिए पानी के किनारे पर ही उल्टा निकलता है। तो चक्रवर्ती क्या बताते हैं, ये पानी क्या है, है ना, ये पानी है जीव आत्मा का मन, हमारा मन, क्योंकि हमारे मन, हमारा जो मन है वो इच्छाओं से भरा हुआ है, हमारे मन में ये सब प्रतिबिंब हो रहा है, इसलिए हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं वो इस भौतिक जगत में पूरी करके हम आनंदित होना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा रोग है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस रोग को कैसे खत्म किया जाए, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, के इस चित्त का दर्पण जो कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है इच्छाओं के कारण, इसका मार्जन करो। कैसे करो, हरिनाम संकीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, कीर्तन करो, उसे आपकी चित्त का दर्पण है जिसमें ये भौतिक जगत का अक्स आ गया है और आपको इच्छाएं पूरी करने के लिए विवश कर रहा है, उसको साफ करो भगवान के पवित्र नाम का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे तो हृदय से इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त कहा गया, श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्लोक कीर्तन, कि भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करेंगे फिर क्या होगा, विदनोति सुहृत सम, ये कथाएं जो हैं वो हमारे हृदय के अंदर आकर इस गंदगी को विधुनोती साफ करेंगी और फिर क्या हो जाएगा, हृदय के अंदर इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, भगवान को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा बनी रहेगी जो कि इस भौतिक वृक्ष से मुक्त करके हमें आध्यात्मिक वृक्ष जहां पर वास्तविक आनंद है वहां तक पहुंचा देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।